सरकार की इंटर जनरेशनल रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है कि अगले 40 वर्षों में 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के ऑस्ट्रेलियाई लोगों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो जाएगी। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कार्यबल से बाहर हो सकता है। अर्थशास्त्री और बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया जैसे समूह उन लोगों में से हैं जो सरकार के सेवानिवृत्ति के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए प्रवासन पर ध्यान देने का आग्रह कर रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर मार्क हम्फ्री जेनर मानते हैं कि प्रवासन के बिना सिकुड़ता कार्यबल युवा लोगों पर एक महत्वपूर्ण बोझ डाल सकता है।
So in essence, we're looking at a confluence of declining revenue, at least from that proportion of the population, and increasing expenditure, which puts more of a burden onto the personal income taxes of perhaps the younger generation, which is a major problem that we're seeing in the intergenerational report. And migration is one way to help to mitigate that, particularly if you could help to increase the overall tax base by perhaps bringing in younger migrants who can perhaps help to lessen some of that burden.
Grattan Institute ke aarthik niti karyakram nideshak Brendan Coates kehte hain ki ye ek achhi wajah hai jisse pravasan ko protsahit kiya jana chahiye.
So most migrants arrive in Australia when they're relatively young, as international students, as skilled workers, or as the spouses of Australians. And so they tend to be young. Now obviously they age, but they spend 30-40 years in the workforce and smooth out
अन्य समूह सावधानी बरतने का आग्रह कर रहे हैं। यामामा आगा सेटलमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल में न्यूकमर सपोर्ट के लिए महाप्रबंधक हैं। वे कहती हैं कि एक बार जब वे ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो कई प्रवासियों और शरणार्थियों को अपर्याप्त भाषा समर्थन जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यामामा का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए अपनी प्रवासन प्रणाली में सुधार करना चाहिए और जो वे पेश कर रहे हैं उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।
The workforce of migrants settling in Australia is they have a lot to offer, but they kind of overlooked in the current system because of overseas qualification system.
Immigration agent Milind Kulkarni बताते हैं कि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा युवा प्रवासन सरकार के हाथ में है।
जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, उसके हिसाब से अगर आपने देखा तो ये लोग क्या करते हैं कि हर साल उनका जो सर्वे करके मालूम करते हैं कि अभी हम लोग को कितने लोग चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए। तो इस साल का अगर आपने देखा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ 2023-2024 के बारे में, स्किल्स टीम के लिए उन्होंने 1,37,100 पोजीशंस ओपन की हुई है। लेकिन अगर इसमें अगर आप पेरेंट वीसा के लिए देखेंगे तो पेरेंट वीसा के लिए 8,500 पोजीशन सिर्फ ओपन है। तो पेरेंट वीसा के लिए अगर आपने देखा तो उसमें क्यू जो है सिर्फ पेरेंट और एज्ड पेरेंट के लिए अभी लास्ट ईयर के हिसाब से ऑन एन एवरेज उनको 20 साल लग रहे हैं। तो नॉर्मली अगर उन्होंने देखा तो उन्होंने दो इनके वेबसाइट के ऊपर भी उन्होंने डिटेल दिए हुए हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीसा है उसके लिए 12 साल ले सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर केस में उन्होंने देखा ऑन एन एवरेज इट इज टेकिंग 6 ईयर्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीसा। और लेकिन अगर किसी ने पेरेंट और या एज्ड पेरेंट कैटेगरी के अंडर अगर उन्होंने वीसा एप्लीकेशन डाला है तो उनको ऑन एन एवरेज 20 साल से 29 साल तक लग सकते हैं। सो 10 साल से 29 साल तक लग सकते हैं। तो ये जो बाहर के जो लोग आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसका जो कंट्रोल है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का होम अफेयर्स का जो ऑफिस है वो दे पुट नंबर ऑफ सीलिंग कि कितने लोग कौन से इसके इसमें आ सकते हैं, उसके हिसाब से दे कैन कंट्रोल कि कौन से कैटेगरी में दे कैन गेट मोर पीपल हियर।
प्रोफेसर हम्फ्री जेनर इस बात से सहमत है कि वीजा भी एक बड़ा मुद्दा है।
There's absolutely barriers in terms of visas. So many migrants want to enter the workforce in Australia. We've got many graduates going through universities that really do want to stay within Australia. They've been qualified by Australian universities, built up skills over here, oftentimes built up a network of friends or family over here, and they would very much like to remain within Australia. However, the visa system makes it quite difficult. So the skilled visas are notoriously challenging to get, and if we don't loosen up some of those systems, it will make it difficult to attract people.
Professor Humphrey Jenner ka kehna hai ki bade badlavon ke bina Australia anya paschimi deshon jaise Canada, England aur America ke samne apni pratibha khone ka jokhim utha raha hai. Is chinta ko Australia ki Business Council bhi saajha karti hai. लेकिन दूसरा बड़ा मुद्दा ऑस्ट्रेलिया में रहने की लागत और आवास संकट है. कई लोगों को डर है कि बड़ी संख्या में प्रवासी बढ़ती कीमतों के लिए बलि का बकरा बन सकते हैं. अधिकांश विशेषज्ञ योजना, कानूनों और आपूर्ति पर उंगली उठाते हैं. राष्ट्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आपूर्ति को संबोधित करने के लिए एक प्रमुख नीति की घोषणा की, जिसमें राज्यों और क्षेत्रों को अगले 5 वर्षों में 10 लाख नए घर बनाने के अद्यतन लक्ष्य तक पहुंचने पर $3 बिलियन तक प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है. ब्रेंडन कोट्स कहते हैं कि ये एक अच्छी शुरुआत है.
So that's the kind example of the kinds of things that we need to do to make sure that the states in particular are able to deliver, you know, the housing that's needed to house a growing population. You know, we should also be looking closely at infrastructure to make sure that we're building the right kinds of infrastructure in the right places to manage that population growth. But ultimately, it's a case of planning for that population growth as best we can, to make sure that we retain popular support for the migration program, particularly skilled migration, because it does provide very large benefits to the Australian community.
Professor Humphrey Jenner कहते हैं कि प्रवासन के लाभों के बारे में संचार करना भी महत्वपूर्ण होगा.
It's challenging, it appears, for politicians to encourage more migration without fearing an electoral backlash. And politicians should perhaps manage their messaging in advance by helping to communicate to the Australian population that it helps everyone to encourage more migration. And that's not just more skilled migration per se, but also more migration that would enable perhaps family reunions, which helps to make Australia a more attractive destination to migrants. And there are clear benefits to Australians from that. Clear benefits in terms of increased productivity, in terms of increased innovation, in terms of increased diversity, which helps to improve overall productivity and national growth.
SBS News से रूथ मैक्यू डिलन की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी द्वारा आपके लिए प्रस्तुत किया प्रियंका हतवर्णे ने.